26 सितंबर दिन शनिवार इंडिया बोल में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फदल का। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने आरक्षण पर फिर से विचार करने के लिए कहा। राजस्थान में वसुंधरा राजे सरकार ने आरक्षण की सीमा 68% कर दी। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने कहा कि अगर आरक्षण से छेड़छाड़ हुई तो आंदोलन होगा। क्या भारत में आरक्षण नीति पर दोबारा विचार करने का समय आ गया है? यही है आज के इंडिया बोल का विषय। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए इन नंबरों पर मुफ्त फोन करें 1811-7000 और 1800-102-7001 पर।
बीबीसी समाचार हरिता कांडपाल से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क में G4 देशों की बैठक की मेजबानी की। G4 देशों में भारत के अलावा ब्राजील, जर्मनी और जापान शामिल हैं। उन्होंने बैठक में संयुक्त राष्ट्र में सुधारों पर जोर देते हुए कहा कि संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में दुनिया के बड़े लोकतांत्रिक देशों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र में सुधार एक तय समय सीमा के अंदर किए जाने चाहिए क्योंकि एक महत्वपूर्ण काम है। मोदी ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र जो छवि देता है वो पिछली सदी की है जिसे हम पीछे छोड़ चुके हैं, ना कि उस सदी की जिसमें हम हैं। चुनौतियां और खतरे अब दूसरी तरह के हैं। मोदी इसके बाद कैलिफोर्निया की सिलिकॉन वैली जाने वाले हैं जहां वो फेसबुक के CEO मार्क जुकरबर्ग से मुलाकात करेंगे। थाईलैंड में बैंकॉक में हुए धमाकों के मामले में पुलिस ने कहा है कि अब पर्याप्त सबूत मौजूद हैं कि पकड़े गए दो संदिग्धों में से एक ने ही इरावन मंदिर के पास बम रखा था। पुलिस के प्रवक्ता प्रावुत थावॉर्न सिरी ने कहा कि CCTV फुटेज में पीली टी शर्ट पहने दिख रहे उस शख्स ने ही इरावन मंदिर के पास बम रखा था। बताया जाता है कि इसके पास गिरफ्तारी के समय तुर्की का फर्जी पासपोर्ट था। थाईलैंड की पुलिस के प्रवक्ता प्रावुत थावॉर्न सिरी ने कहा अब हमें विश्वास है कि हमारे पास पर्याप्त सबूत हैं कि हम सैन्य अदालत से इरावन मंदिर और साथोर्न पियर के पास धमाकों के मामले में वारंट की मांग कर सकते हैं। बम अपने पास रखने के आरोप के अलावा उस व्यक्ति की भी पहचान कर ली गई है जो 20 लोगों की मौत का जिम्मेदार है। उसने आज गुनाह कबूल कर लिया है। उसने घटनास्थल पर पूरे घटनाक्रम के बारे में भी हमें बताया है। ये थे इस प्रवक्ता के शब्द, आप सुन रहे हैं BBC समाचार। सऊदी अरब के वरिष्ठ मुफ्ती शेख अब्दुल अजीज बिन अब्दुल्ला अल शेख ने कहा है कि हज के दौरान हुई भगदड़ पर इंसान का वश नहीं था। गुरुवार को मीना में शैतान को कंकड़ मारने की प्रक्रिया के दौरान भगदड़ में 700 से ज्यादा लोग मारे गए थे और 800 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। उन्होंने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन नाइफ को भगदड़ की जिम्मेदारी से बरी करते हुए कहा कि तकदीर को टाला नहीं जा सकता। ग्रीस के लेस्पोस द्वीप के कोस्ट गार्ड के प्रमुख ने तुर्की की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि तुर्की नाव से आ रहे प्रवासियों को रोकने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठा रहा। एंटोनियोस सोफिया डेलिस ने BBC को बताया कि तुर्की के सहयोग के बगैर ग्रीस की सरकार सारी नावों को नियंत्रित नहीं कर सकती। पिछले कुछ दिनों से बड़ी संख्या में प्रवासी तुर्की से खतरनाक सफर तय कर लेस्बोस द्वीप पहुंच रहे हैं। रूस की सुरक्षा एजेंसी ने कहा है कि ग्रीस के आरोप में पकड़े गए एक एस्टोनियाई नागरिक को रूस को जानकारी देने के आरोप में जेल में बंद एस्टोनिया के एक पूर्व अधिकारी के बदले में सौंप दिया गया है। BBC समाचार।
नेता बोले,
अफसर बोले,
पैसा बोला,
बंदूक बोली,
अभिनेता विलेन बोले,
नहीं बोल सके तो बस आप।
अब इंतजार खत्म, जुबान पर लगे ताले खोल, BBC इंडिया बोल। इंडिया बोल में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फदल का। आरक्षण के मुद्दे पर इन दिनों नए सिरे से विवाद उठ खड़ा हुआ है। शुरुआत सुप्रीम कोर्ट द्वारा जाटों के लिए आरक्षण के सरकारी फैसले को रद्द करने से हुई, फिर गुजरात में पटेल समुदाय के आरक्षण आंदोलन ने काफी गंभीर रूप धारण कर लिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंचालक मोहन भागवत की आरक्षण की समीक्षा को लेकर टिप्पणी से भी खासा बवाल मचा। अब राजस्थान सरकार ने आरक्षण पर दो नए कानून बनाए हैं। एक विधेयक के जरिए विशेष पिछड़ी जाति वर्ग के लिए आरक्षण बढ़ाकर 5% कर दिया गया है और दूसरे विधेयक के जरिए सवर्ण जातियों में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को 14% आरक्षण दिया गया है। आज हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार अरुण त्रिपाठी हमारे साथ हैं। आपका स्वागत है बीबीसी स्टूडियो में। इससे पहले कि श्रोता आपसे सीधे रूबरू हों, सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या आप समझते हैं कि आरक्षण नीति की समीक्षा करने का समय आ गया है?
नहीं, बिल्कुल नहीं समझता, क्योंकि आरक्षण नीति ने इस देश में एक सामाजिक और राजनीतिक संतुलन कायम कर रखा है, और अगर अभी हम समीक्षा की शुरुआत करेंगे तो वो संतुलन बिगड़ेगा, और उस संतुलन के बिगड़ने से समाज में तरह तरह के तनाव और उथल पुथल की स्थितियां बनेंगी, और हमें उससे अगर देश को विकास के रास्ते पर ले जाना है तो एक सामाजिक शांति भी ज़रूरी है, और वो सामाजिक शांति अगर व्यवस्थित होगी, उसमें व्यवधान उत्पन्न होगा तो विकास प्रभावित होगा।
अरुण त्रिपाठी कह रहे हैं स्टेटस को रहना चाहिए, अभी वक्त नहीं आया है समीक्षा के लिए। सीधे चलते हैं नाइजीरिया लेगोस। इस समय टेलीफोन लाइन पर विनोद कुमार सिंह हमारे साथ हैं। विनोद, अगर आप हमारी बात सुन रहे हों तो अपनी बात कहिए।
जी नमस्कार सबको। ये समीक्षा की जरूरत नहीं है, शांति चाहिए। तो कब तक हम चुप रहेंगे कि भाई रामविलास पासवान करोड़ों को बंगले में है, माझी करोड़ों के बंगले में है, अपने मायावती जी करोड़ों के बंगले में है, तो हम कब तक इंतजार करेंगे कि एक आदमी अरबपति खरबपति हो जाए और हम समीक्षा ना करें, क्योंकि शांति भंग होगी और बाकी लोग जो गरीब के गरीब हैं वो गरीब ही हैं, तो हम ये कैसे बदलेंगे और कैसे हम चुपचाप रहेंगे, कितने दिनों तक रहेंगे, क्यों नहीं निकाल रहे हैं मायावती रामविलास पासवान और मांझी को बाहर आरक्षण की नीति से, क्यों नहीं हम इसका रूप बदल के कुछ और कर दे, आरक्षण न देके हम कहें कि भैया नहीं हम पढ़ाई लिखाई के पैसे देंगे, आरक्षण नहीं देंगे, कम अगर आपकी एजुकेशन है तो आपने जो बनाया है वो ढहेगा ही ढहेगा, तो हम चुप कब तक रहेंगे? सवाल ये है कि कब तक रामविलास पासवान गलत फायदा उठाते रहेंगे, मांझी उठाते रहेंगे या मायावती उठाते रहेंगे, और जब तक कुछ दूध गर्म नहीं करेंगे तो पानी निकलेगा नहीं, ऐसे ही।
अरुण जी, विनोद जी कह रहे हैं कि बहुत नाराज दिखाई दे रहे हैं और वो कहना चाह रहे हैं कि ये कब तक चलेगा ये।
विनोद जी की नाराजगी जिस तरफ जो संकेत कर रही है, जैसे उसमें भारतीय राजनेता चाहे वो पिछड़े वर्ग के हों चाहे दलित वर्ग के हों, जिन्होंने बेहिसाब संपत्तियां इकट्ठा की हैं, एक मसला तो उनका वो है, उस पर वो ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वो इस बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि इंदिरा साहनी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का जो 1992-93 का फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, उसने बाकायदा क्रीमी लेयर को जो है आरक्षण की सुविधा से बाहर किया था, और दूसरी बात यह है कि 50% का बैरियर उसने लगाया था, तो वो सारी चीज़ें अपने ढंग से चल रही हैं, इस व्यवस्था में वो कायम है। जो ओबीसी रिजर्वेशन का जो मसला था वो बैरियर उसने लगाया था। दूसरी चीज़ ये है कि कब तक का मामला, इतनी बड़ी ज़्यादती जो है विनोद जी पर नहीं हो गई है, जिसको इतनी बड़ी पीड़ा के साथ कह रहे हैं। विनोद जी अगर देखेंगे तो इस समाज में हजारों साल से जाति और यौन के जो कटघरे हैं, अगर उस असमानता को हम नहीं मिटाएंगे तो इस देश में दूसरी तरह की अशांति आएगी, और आरक्षण के बहाने इस समाज में के विघटन को रोका गया है, समाज को इंटीग्रेट किया गया है। विनोद जी इस बात को समझ नहीं रहे हैं, वरना भारत आज एक राष्ट्र न होता, भारत की इस तरह की सामाजिक एकता न कायम हुई होती, और मायावती रामविलास पासवान कालांतर में भ्रष्ट हुए हों ये एक अलग मसला है और उसकी जांच होनी चाहिए, उसकी जांच से मुझे कोई इनकार नहीं है, लेकिन इन राजनेताओं ने हजारों लाखों दलितों और पिछड़ों की भावनाओं का प्रतिनिधित्व भी किया है, इस बात से न विनोद जी इनकार कर सकते हैं न मैं इनकार कर सकता हूँ।
तो अरुण जी, अभी आपने जिक्र किया, खुद ही आप बता रहे थे 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये अभी पिछले दिनों खबर आई, अभी 4-5 दिन पुरानी खबर है, राजस्थान में 68% आरक्षण की बात कही गई है। आपको लगता है कि ये सिर्फ पॉलिटिकल लिप सर्विस है, ये सिर्फ एक झुनझुना पकड़वाने की कोशिश है, ये जुडिशियल स्क्रूटनी झेल पाएगा ये जो फैसला लिया गया है?
मुझे नहीं लगता। एक अपवाद स्वरूप जो है वो तमिलनाडु का केस है, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने विशेष स्थितियों में 50% से ज़्यादा, बल्कि 60% से ज़्यादा आरक्षण की अनुमति दी है। लेकिन हर मामले में न्यायालय इस बात की अनुमति देगा मुझे लगता नहीं है, क्योंकि जाटों का आरक्षण इसी आधार पर खारिज हुआ और इसी आधार पर सरकार जो है वो एक तरह से सवर्णों, आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं कर पा रही है, क्योंकि वो संविधान सम्मत नहीं है। संविधान में अनुच्छेद 16 क्लाज 4 में जो बात कही गई है वो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड सेक्शन के लिए रिजर्वेशन की बात कही गई है, इकोनॉमिक बैकवर्ड सेक्शन के लिए रिजर्वेशन की बात नहीं कही गई है। तो जो समाज में आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्ण हैं, अन्य जातियाँ हैं जो कि इस 16 क्लास 4 की श्रेणी में नहीं आती, उनके लिए दूसरी व्यवस्थाएं की जानी चाहिए और वो समाज और वो सरकार और बाजार और समाज को अलग अलग उपाय किए जाने चाहिए। लेकिन ये एक आरक्षण का जो प्रावधान है वो संविधान की एक खास धारा से जुड़ा हुआ है और जिसकी अभी नहीं स्क्रूटनी, बार बार स्क्रूटनी हुई है, उस पर पोलिटिकल बैटल लाइन्स मत ड्रा कीजिए। मेरा विनोद जी से और तमाम लोगों से यही कहना है कि इस देश में एक राजनीतिक आम सहमति बनी हुई है आरक्षण को लेकर के, उस आम सहमति को छेड़ेंगे तो दिक्कत समाज में हो।
आइए वहां से बाहर निकला जाए और चलते हैं बनारस। इस समय टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं राहुल कुमार। राहुल कुमार पीएचडी कर रहे हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र हैं। राहुल, आपके बहस सुन रहे हैं, बताइए क्या कहते हैं आप?
मेरी राय ये है कि गुजरात का जो पटेल आंदोलन है और हरियाणा का जो जाट आंदोलन है, महाराष्ट्र में जो मराठा आंदोलन है, वो मूल रूप से आरक्षण की मांग के लिए नहीं बल्कि आरक्षण को समाप्त करने की एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। उनकी मांगों पे बड़ा थोड़ा गौर करें, हमें नहीं तो किसी को नहीं, आरक्षण से देश पिछड़ गया। इस आंदोलन को का नेतृत्व करने वाले लोग किस दल से जुड़े हैं और वहां किस पार्टी की राज्य सरकार है, ये हम सभी जानते हैं। इसे समझने का प्रयास हमें करना चाहिए कि आरक्षण को एकाएक समाप्त नहीं किया जा सकता, इसलिए क्योंकि सोशल रिवोल्ट हो जाएगा। इसलिए राजनीतिक दल चाहते हैं, एक खास राजनीतिक दल चाहता है कि आरक्षण को निष्प्रभावी बना दिया जाए, जिससे इसका लाभ दलितों, आदिवासी, पिछड़ों को न मिल सके। और इसके लिए उन्होंने एक नया तरीका ढूंढ निकाला है कि एक एक करके अग्रणी संपन्न जातियों को आरक्षण देकर दे दिया जाए, जिससे कि सामाजिक न्याय और समानता पे आधारित भारत का जो स्वप्न हमारे संविधान निर्माताओं ने देखा था, उस स्वप्न को साकार न किया जा सके, वो स्वप्न समाप्त हो जाए। इसी का एक प्रयास, एक साजिश जो है वो एक लंबे समय से चल रहा है और इसके लिए हथकंडे शुरुआत से ही हो रहे हैं।
आपने,
और
उसका आपने, एक... जी जी, आपने अपनी बात बहुत ढंग से रखी है। क्या कहते हैं?
नहीं, राहुल की बात निश्चित तौर पे बहुत बेबाक है और बहुत एक सामाजिक चिंतन उसमें दिखाई पड़ रहा है, और जो उनका ऑब्जर्वेशन है वो लगभग मेरा भी ऑब्जर्वेशन उसी उन्हीं लाइनों पर है, क्योंकि
लेकिन ये जो इन्होंने बात कही कि अगर दूसरों को अगर हमें आरक्षण नहीं तो दूसरों को भी
जी
नहीं।
जी जी, एक उपहास उड़ाने का तरीका है आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था को, उसको निष्प्रभावी कर देने का, राहुल भी वो बात कह रहे हैं और वो सबके ऑब्जर्वेशन में आ रहा है। और दरअसल जो हार्दिक पटेल हों या अन्य लोग हों जो इस तरह की मौकरी कर रहे हैं, उनके चिंतन में कभी इस देश की जाति व्यवस्था को समाप्त करने का जो प्रोग्राम था, जो आइडिया था, वो था ही नहीं। और आरक्षण एक कोशिश थी कि इस देश की जाति व्यवस्था कमज़ोर हो और वो धीरे धीरे टूटे। हालांकि सिर्फ आरक्षण से जाति व्यवस्था टूट जाएगी ये भी मैं, इस बारे में पूर्ण विश्वास मेरा नहीं है। तो ये एक प्रयास उस दिशा में आरक्षण है।
तो अब देखते हैं कौन इस समय टेलीफोन लाइन पर है, बताएं कहां से बोल रहे हैं और अपना परिचय दें पहले।
नमस्कार धान जी।
नमस्कार।
हाँ, मैं सूरज मिश्रा बोल रहा हूँ, भटरा घाट बिस्सी मधुबनी बिहार से।
जी बताएं सूरज जी।
हाँ, मैं कहना चाहता हूँ जो इस भारत वर्ष में दीमक रूपी आरक्षण ढुका हुआ है, घुसा हुआ है, जो इस भारत को खोखला कर रखा है, जहाँ कहीं भी अगर विकास की बात आती है तो विकास के मार्ग में बाधा डालती है और जो कुछ भी विकास हो चुका है उसको वो फिर पीछे से खोखला कर देती है, ठीक है। और दूसरी तरफ देखें तो आरक्षण जो है ना एक वीक की तरह है जो आरक्षित वर्गों को प्राप्त होती है और इसकी लत उसी इस रूप में लग चुकी है जो अगर इसको डायरेक्ट रूप से सीधी तौर पर समाप्त किया जाए वो उसके बगैर जी नहीं सकते।
सूरज कह रहे हैं कि एक भीख की तरह है, आप बताएं।
रियाज साहब ये एक दिक्कत मुझे
ये जो पूरा सवाल है सेल्फ एस्टीम का कि अगर आप कोई किसी चीज़ को ग्रहण करते हैं और वो आपको बगैर किसी मेहनत के मिलती है तो आप अपनी नज़र में खुद आपको नहीं लगता कि आप वो डिज़र्व नहीं करते।
रियान साहब जो भारत निर्माण का स्वप्न जो है हमारे स्वाधीनता संग्राम के नेताओं ने और अंबेडकर ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने जयप्रकाश नारायण ने अन्य लोगों ने देखा था उसमें जो है वो डॉक्टर लोहिया तो ये कहते थे कि सवर्णों को पिछड़ों और दलितों की उन्नति के लिए खाद बनना पड़ेगा और वो खाद बनेंगे तभी इस देश की जो है व्यवस्था में समता आएगी और जाति और यौन के कटघरे टूटेंगे। लेकिन मुझे हैरानी हो रही है कि जो है वो बिहार से मिश्रा जी जिस तरह की बातचीत कर रहे हैं कि दीमक है और कमज़ोर कर रहा है और भीख है, भीख नहीं है वो जो दलित और पिछड़ा वर्ग उसको अपने अधिकार के रूप में मान रहा है। और बाबा साहब ने यह बात कही थी अंबेडकर ने कि आज हम ये संविधान एडल्ट फ्रेंचाइज के रूप में जहां एक व्यक्ति और एक वोट का अधिकार दे रहे हैं, समता का अधिकार, राजनीतिक समता दे रहे हैं, लेकिन इस समाज में सामाजिक और आर्थिक समता नहीं है। और अगर बिना आर्थिक सामाजिक समता के हम ज्यादा दिन चलेंगे तो एक दिन इस देश का नागरिक इस संविधान को जला देगा और उठा करके फेंक देगा।
लेकिन अरुण जी इस तर्क में कितना दम है कि अगर किसी भी व्यक्ति ने जितनी भी आर्थिक प्रगति कर ली हो वो अभी भी सामाजिक रूप से डिसएडवांटेज्ड है, क्या ये तर्क गले उतरता है?
नहीं, एक बात तो निश्चित तौर पे है कि वो सामाजिक सम्मान जो है जो एक आपको बड़ी जाति में पैदा होने से या बड़े जो है वो क्लास में पैदा होने से आपको प्राप्त होता है तो वो तो तत्काल आपको नहीं मिलता निश्चित तौर पे। अब इस बात को जैसे कि तमाम लोग अलग तरह से कहते हैं और वो देखे जाने लायक चीज़ है, एक बाकायदा जो है जो ट्रेडिशनल रिजर्वेशन हमारी धार्मिक संस्थाओं में, हमारी जो है वो एक तरह से संस्कृत के पठन पाठन में, हमारी जो एक तरह से जो है जो ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर है रिलीजन का उसमें बाकायदा जो है वो बद्रीनाथ मंदिर के पुजारी, रामेश्वर मंदिर के पुजारी और शंकराचार्य से लेकर के तमाम लोग जो बैठे हुए हैं वहाँ कोई दलित पिछड़ा स्थापित नहीं हो सकता, जो है उनकी अपनी दिक्कतें हैं, वो बाकायदा व्यवस्था है। तो या तो इस तरह की मांग भी उठ रही है कि इस स्ट्रक्चर को भी अगर हम बदलते हैं तो हम एक प्रगतिशील तरह से हिंदू धर्म को और उस ढांचे को बनाएंगे और वो एक अच्छा कदम होगा अगर हम इस तरह के चीज़ों को बना सकते हैं। तो वो मुश्किल है अगर आप आर्थिक रूप से बहुत संपन्न हैं लेकिन फिर भी आपके चरण छूने वाले, आपके चरण धो करके और चरणामृत लेने वाले लोग नहीं मिलेंगे आपको, उस तरह से नहीं होगा।
तो इस पर बहस जारी रहेगी। अभी फिलहाल चलते हैं हिंगोली महाराष्ट्र, तातेराव खंडागले इस समय टेलीफोन लाइन पर हैं। बताइए आप ये पूरी बहस सुन रहे हैं, क्या आपका क्या सोचना है इस बारे में?
सर मेरा ये सोचना है कि आरक्षण चालू रहना चाहिए, जब तक इस देश में जाति व्यवस्था है तब तक सामाजिक समता नहीं आ सकती और सामाजिक समता आने के लिए आरक्षण बहुत ही जरूरी है। अभी भी महाराष्ट्र में जो लोगों ने रिजर्वेशन का लाभ लिया है उनको भी पूरा सम्मान नहीं दिया जाता, बहुत विषमता है। जब तक सामाजिक विषमता है तब तक आरक्षण चालू रहना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है।
तो इनका कहना है इसे, जी आप अपनी बात जारी रखें।
जब तक ये जाति व्यवस्था कायम रहेगी तब तक आरक्षण रहना चाहिए। अगर 10-20 साल भी और आरक्षण मिला तो समाज के सभी पिछड़ों का विकास मेरे ख्याल से जरूर होगा और फिर उसके बाद आरक्षण हट भी गया तो इस देश को कोई नुकसान नहीं होगा, बहुत खुशहाली आ जाएगी।
इनका कहना है कि आरक्षण जारी रहना चाहिए और लेकिन सवाल उठता है कब तक, क्या अनंत काल तक, क्या हमेशा के लिए? कोई एक स्टेज ऐसी आनी चाहिए जहां हमें कहना चाहिए कि शायद इसके आगे नहीं।
रेहान साहब मुझे एक बात जो है और जिसकी बहुत चर्चा भी हम लोग करते हैं, संविधान का अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21 और 16(1) और जिसके बारे में ये भी कहा जाता है, जो इंदिरा साहनी केस की बहस सुप्रीम कोर्ट में हुई थी उसमें यही कहा गया था कि क्या अनुच्छेद 16 क्लाज 4 16 क्लाज 1 का जो है वो एक तरह से अपवाद है, प्रतिलोम है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि नहीं, ये उसी का हिस्सा है। तो मतलब जो हम जाति और धर्म और तमाम तरह की जो है वो भाषाओं के से अलग हट करके लोगों को समता का अवसर देते हैं वो संविधान ने दिया है, और वो समता का अवसर ठीक से नहीं बन रहा है इसलिए हम विशेष अवसर का सिद्धांत लागू करते हैं, इसलिए वो बन रहा है। लेकिन जो बात एक साथी अपने महाराष्ट्र से कह रहे हैं, मुझे उन पर एक टिप्पणी ज़रूर करनी है कि सिर्फ जो है आरक्षण से ये जाति व्यवस्था टूटने वाली नहीं है, बहुत जटिल संरचना है और हम सब लोग इसको बहुत सरलीकृत तरह से समझ रहे हैं। अगर ये जटिल न होती तो हजारों साल से टिकी न होती। तो इसमें सिर्फ रिजर्वेशन की व्यवस्था से नहीं, क्या रिजर्वेशन की व्यवस्था से जो है बेटी के रिश्ते बनने लगे हैं लोगों के, ये सवाल है। लड़कियां और लड़के अपनी मर्जी से भले शादियां कर लें लेकिन अरेंज्ड मैरिजेस एक ब्राह्मण और एक दलित के परिवार में अभी भी नहीं हो रहे हैं, वो बड़ी मुश्किल है। जिस दिन वो खुले आम तरह से होने लगेंगे स्वीकृत रूप से, उस दिन माना जाएगा कि असलियत में जाति की जो जकड़बंदी है वो टूटी है। रोटी का रिश्ता तो बना है लेकिन बेटी का रिश्ता अभी नहीं बना है, और स्वाभाविक रूप से सहज रूप से ब्राह्मण और दलित के बीच में बेटी का रिश्ता जिस दिन बनेगा उस दिन निश्चित तौर पे एक अल्पसंख्यक समुदाय के बीच में, एक बहुसंख्यक समुदाय के बीच में रोटी बेटी का रिश्ता जिस दिन खुलेआम बनेगा उस दिन भारतीय समाज एक समरस समाज होगा। तो हमें आरक्षण से पैदा होने वाले तनाव और जहर को भी मारना है, और उस जहर को मारने के लिए जो सामाजिक दर्शन है, जो अन्य सामाजिक कार्य हैं उसको बंद नहीं करना है। मुश्किल जो आ रही है, जो तरह तरह की कटुतापूर्ण टिप्पणियाँ आ रही हैं, चाहे वो बिहार से आ रही हों चाहे वो बनारस से आ रही हों, वो इसलिए आ रही हैं कि हमने जो बाकी बंधुत्व वाले, सामाजिक समरसता वाले, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी दोनों को एक साथ लेके चलना होगा। इक्वलिटी फ्रेटर्निटी की कीमत पे इक्वलिटी हम नहीं कायम कर पाएंगे, और इक्वलिटी की कीमत पे फ्रेटर्निटी भी नहीं कायम कर पाएंगे, दोनों का एक तालमेल रखना होगा।
आइए सीधे चलते हैं गोरखपुर, जहाँ से समय टेलीफोन लाइन पर हैं अतुल शाही। अतुल, आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे पर?
सर, हमारा यही कहना है सर आरक्षण के बारे में जो है, सर इस पे विचार करना चाहिए सर कि जात विशेष पे सर आरक्षण नहीं देना चाहिए। सर क्या सवर्णों में गरीब नहीं है? इस मुद्दे को सरकार को देखना चाहिए सर, और ये जो है आरक्षण देना भी चाहिए तो कब तक, आखिर कब तक आरक्षण चलेगा? क्या आरक्षण देने से जो है सारी जो है जाति पात और भी जो समस्या जो है क्या समाप्त हो जाएगी?
अतुल कहना चाह रहे हैं कि आर्थिक आरक्षण, आर्थिक दृष्टि पर या आर्थिक मापदंड पर आरक्षण जो है वो होना चाहिए, इसके खिलाफ क्या तर्क हैं, क्यों ऐसा ना हो?
देखिए तर्क तो बहुत सारे हैं, और बाकायदा जो है वो आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम नहीं है। आरक्षण बाकायदा इस देश की जो जाति व्यवस्था है और जो असमान जाति व्यवस्था है, जिसके बारे में समाजशास्त्री लुई दुमोंत ने कहा है कि ये वर्टिकल है, जो होमो हायरार्कियस है, और तमाम लोग नहीं मानते, लेकिन ये जो खड़ी खड़ी जाति व्यवस्था है इसको ढीला करने का, इसको जो है हॉरिजॉन्टल करने का एक प्रयास है। और वो कोई सबको आरक्षण के तहत नौकरियां नहीं मिल जाती, और मुश्किल से 5% लोगों को इसका लाभ पहुंचा है, और उसमें भी तमाम तरह के मैनिपुलेशन, तमाम तरह के बैरियर्स और जो है वो एक तरह से अवरोध पैदा किए गए हैं जो सवर्ण जातियों की तरफ से है। उन्होंने एडहाक नियुक्तियाँ की, जो प्रॉपर नियुक्तियाँ थी दलितों पिछड़ों की वो नहीं की, उनको रोक के रखा। अभी भी आपकी जुडिशरी में, अभी भी आपकी आर्मी में, तमाम जगहों पर रिजर्वेशन नहीं है। और दूसरी चीज़, पिछले 25 सालों में पूरा का पूरा प्राइवेट सेक्टर बहुत बड़ा होकर के इमर्ज करके आया है, उसमें तो बिल्कुल ही नहीं है। तो जो भी अवसर थे बहुत सिंबॉलिक किस्म के, सरकारी नौकरियों में अवसर हैं, और वहाँ सिंबॉलिक तरह से एक मिडिल क्लास क्रिएट हो रहा है पिछड़ों दलितों का।
एक और सवाल मैं उठाना चाहूँगा, हालांकि कोई ज़रूरी नहीं कि मैं उससे व्यक्तिगत रूप से सहमत हूँ, लेकिन यहाँ मैं इस भूमिका में हूँ डेविल्स एडवोकेट, जो कि एक तर्क दिया जाता आरक्षण के खिलाफ कि साहब एक पीढ़ी को आरक्षण मिल गया लेकिन क्या क्या जरूरी है कि दूसरी और तीसरी पीढ़ी जो कि पूरी तरह से संपन्न है, उसका पूरा फायदा उठा चुकी है, वो भी उसका फायदा उठाए?
ये सवाल निश्चित तौर पे हम लोग तो जो कि तमाम राजनीतिक आंदोलनों को करीब से देखते हैं, और मंडल कमीशन की रिपोर्ट जब लागू हुई तो हम लोगों ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को पढ़ा और देश की तमाम बहसों को देखा, और जाति व्यवस्था के बारे में रेहान साहब सर्वाधिक पुस्तकें अगर किसी विषय पर उपलब्ध हैं, सर्वाधिक टाइटल्स, तो इस देश की जाति व्यवस्था के बारे में। मुश्किल ये है कि हमारे देश का जो सवर्ण समाज है वो विधिवत जाति व्यवस्था के बारे में अध्ययन नहीं करता और इसको समाप्त करने की चिंताओं में से जुड़ा हुआ नहीं है। लेकिन एक बात जो आप कह रहे थे कि एक कितनी पीढ़ियों को दिया जाएगा और अगर पिछली पीढ़ी ने कोई गड़बड़ी की है तो उसको हम जो है वो क्यों झेलें, तो कृपा करके उन गांवों में जा करके देखिए, उन पिछड़े इलाकों में जा करके देखिए जहां अभी भी जो है चाय की दुकानों पर अलग गिलास दिया जाता है, जहां अभी भी जो है वो दलितों के घर जलाए जाते हैं, जहां अभी भी यहां के अखबारों में तमाम जो मीडिया है जो है मेन स्ट्रीम का, वहां जो शीर्षक लगाए जाते हैं, वहां जो खबरें की लिखी जाती हैं, वहां जो टिप्पणियां की जाती हैं, उनमें जातिगत पूर्वाग्रह होते हैं। इस देश में इन चीज़ों को मिटाने के प्रयास होंगे, और ये प्रयास जितने तीव्र होंगे आरक्षण की आवश्यकता उतनी जल्दी समाप्त हो जाएगी। आरक्षण की आवश्यकता समाप्त हो ये हम सभी चाहते हैं, लेकिन आप स्वयं देखिए कि राजनीतिक दलों में इसको लेकर के जो आम राय।
आइए आइए सीधे चलें, दिल्ली के पास एक जगह है हापुड़, वहाँ से समय टेलीफोन लाइन पर हैं विनम्र त्यागी, विनम्र पेशे से पत्रकार हैं। बताइए विनम्र, आप क्या सोचते हैं सब इस विषय पर?
मेरा मानना यह है कि आरक्षण ने उन लोगों को जिन्हें आरक्षण दिया गया था उन्हें फायदा पहुंचाने के बजाय नुकसान दिया है। ये उन लोगों को निकम्मा बना दिया गया, उन लोगों को काबिल नहीं बनने दिया गया। अगर आरक्षण देने के बजाय उनको वो सारी सुविधाएं दी जाती जो सुविधाएं उनको काबिल बनने में जरूरी है, उनको शिक्षित बनाने में जरूरी है, तो वो शायद अपना भी भला करते, अपने समाज का भी भला करते, अपने परिवार का भी भला करते और देश का भी भला
जी,
करते।
जी, विनम्र ने अपनी बात कही, और जो कि आम मध्यम वर्ग की एक तरह से राय है भारत में कि लेकिन इस तर्क को किस तरह से निगेट करेंगे आप?
ये तर्क जो है वो काफ़ी लंबे समय से ये तर्क दिया जा रहा है, और इस तर्क के जवाब जो है हमारी जो राजनीतिक व्यवस्था है, हमारी संविधान सभा है, हमारी न्यायपालिका है, उनने सबने दिया है, और उन्होंने ये महसूस किया है कि ये जो आप अगर त्यागी जी, मुझे नहीं लगता कि त्यागी जी ने अगर ठीक से मंडल कमीशन की रिपोर्ट पढ़ी है, संविधान सभा की बहस पढ़ी है, अनुच्छेद 16 पर जो बहसें हुई हैं उसको अगर ध्यान से देखा हो, या इस देश में जो आरक्षण का इतिहास है, छत्रपति शिवाजी ने वो साहू महाराज जी ने जो लागू किया 20वीं सदी के आरंभ में, तो उन सारी चीज़ों को, उन बहसों को अगर देखेंगे तो ये तर्क अपने आप जो है वो खारिज हो जाता है, क्योंकि इन तमाम चीज़ों के बावजूद, सारी सुविधाएं देने के बावजूद वो लोग उस तरह से सक्षम नहीं बनते।
इस विषय पर बहुत लंबी बहस चल सकती है, लेकिन समय हमारे पास इतना ही, इंडिया बोल में इतना ही आज। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण त्रिपाठी आपका आने के लिए इस कार्यक्रम में। लेकिन सभा की समाप्ति से पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क में G4 देशों की बैठक की मेजबानी की। G4 देशों में भारत के अलावा ब्राजील, जर्मनी और जापान भी शामिल हैं। उन्होंने बैठक में संयुक्त राष्ट्र में सुधारों पर जोर देते हुए कहा कि संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में दुनिया के बड़े लोकतांत्रिक देशों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। थाईलैंड में बैंकॉक में हुए धमाकों के मामले में पुलिस ने कहा है कि अब पर्याप्त सबूत मौजूद हैं कि पकड़े गए दो संदिग्धों में से एक ने ही इरावन मंदिर के पास बम रखा था। सऊदी अरब के वरिष्ठ मुफ्ती शेख अब्दुल अजीज बिन अब्दुल्ला अल शेख ने कहा है कि हज के दौरान हुई भगदड़ पर इंसानों का वश नहीं था। बीबीसी समाचार।
इसके साथ ही रेहान फतल को सभी साथियों के साथ इजाजत दीजिए। ये कार्यक्रम आप तक पहुंचाने में मदद की हेमंत कुशवाहा ने। 1.5 घंटे बाद आपसे फिर मुलाकात होगी घटना चक्र कार्यक्रम में। नमस्कार।